عدد ما تحب وترضى يا كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جب پہلی مجلس اور بیان شروع ہوا تو جو مولانا صاحب علاؤن سنگھ فرما رہے ہیں انہوں نے آ کر کے مجھے درخواست کی کہ کرسی لگا دے. عام طور پر ایسے پروگراموں کے اندر میں کرسی قبول نہیں کرتا. دو وجہ ہے اس کی. ایک تو یہ ہے کہ آزادی کے 63 سال کے بعد بھی ہمارے دیش کی پرگتی میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو کرسی کی لڑائی ہے. اور دوسری بات کہ وہ ایک کہانی سنی تھی کہ کہیں کوئی فنکشن ہو رہا تھا تو فنکشن تھوڑا لمبا ہو گیا. انشاءاللہ میں اب لمبا نہیں کروں گا, آپ نہ گھبرائیں. چونکہ ایسے بھی ہم سنی مسلمان ہیں, سنی کا ایک مادہ اشتقاق سننا بھی ہے. سنتے سنتے سنی ہو گئے, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی سننے کی جتنی صلاحیت تھی وہ سب لبریز ہو چکی ہے. تو ایک فنکشن ہو رہا تھا, بہت لمبا ہو گیا, پورا مجمع سامنے بیٹھے ہوئے سننے والے سب چلے گئے. کرسی پر بولنے والا تھا اور اس کے بازو میں ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا. تو بولنے والے نے جب اپنی بات ختم کی تو کہا سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو کہا کرسی میری ہے, مجھے گھر لے جانی ہے. تو خیر یہ سب ایک حقیقت ہے. بہت اچھی بات ابھی ہمارے بھائی کہہ کر کے ہے. دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ میڈیا والوں سے تو میں رات دن ملتا رہتا ہوں. ہمارے علاقے کے میڈیا والے سب جانتے ہیں مجھے, نیشنل انٹرنیشنل میڈیاؤں میں, ٹائمس آف انڈیا سے لے کر لوکل پیپر تک سب میں میرے انٹرویو کئی مرتبہ چھپے ہیں. میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا مدرسوں میں اگر کوئی ویک پوائنٹ ہو جائے, کوئی کمزور بات ہو جائے تو اسی کو تلاش کر کے ہائی لائٹ کرنا, روشن کرنا, یہی میڈیا کا کام ہے؟ جب کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے, کوئی عیب اور کمزوری کی بات ہوتی ہے, تب تو کوئی ان کو بلانے جاتا نہیں, انوائٹ بھی نہیں کرتا, دعوت بھی نہیں دیتا ہے. پھر بھی کیسے ان کو خبر ہو جاتی ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں؟ کیوں یہ اچھے پروگرام کے بارے میں وہ خود اپنا میڈیا دھرم سمجھ کر کے اس کو ہائی لائٹ کرنے نہیں آتے؟ سوال یہ بھی ہے. خیر بہرحال وہ ایک دوسری لائن کی چیز ہے. تو 1857 کے اندر جب ملک پورا انگریزوں کے تسلط میں چلا گیا اور انگلینڈ سے, یوروپ سے عیسائی مشنریوں کی فوج ہندوستان آنے لگی. اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو ہسٹری کی ایک کڑوی بات آپ کو سنا دوں. انگریز جہاں ہندوستان کو لوٹنے آئے تھے
वहां पर उनका एक नापाक मकसद ये भी था कि हमारे देश को क्रिश्चियन स्टेट बनाना उनका मकसद था। ये पूरे मुल्क को ईसाई बनाना चाहते थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको वो क्रिश्चियन और ईसाई बना करके इस मुल्क को ईसाई मुल्क बनाना चाहते थे। इसलिए वहां से पादरी फंडर और उसके चेलों की टीमें हिंदुस्तान उतर पड़ी और गांव गांव देहात देहात जाकर के उन्होंने क्रिश्चियनिटी और ईसाइयत की तकलीफ शुरू की और लोगों को कन्वर्ट करना मुर्तद बनाना इन्होंने शुरू किया था। ऐसे दौर के अंदर लगता ये था कि पूरा मुल्क पूरा देश नऊज बिल्ला ईसाई बन जावे, इसलिए कि बड़े बड़े उलमा शहीद हो चुके, अब क्या किया जावे। अल्लाह जजाए खैर अता फरमाए हमारे अकाबिरीन दारुलूम देवबंद को, हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह, मक्का में रहते हुए लंबे लंबे सजदे किए, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी और सैयद ताइफा हजरत मौलाना मोहम्मद रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्ला अलैह, ये वो हमारे आबाओ अजदाद हैं, सर जोड़ के बैठे और कई दिनों के इस्तिखारे मुराकबे दुआओं और फिक्रों के बाद 30 मई 1866 को दारुलूम देवबंद की बुनियाद रखी। ठीक 9 साल गुजरने के बाद 1857 की नाकामी की और इन्होंने ऐलान किया कि दारुलूम का कायम करने का एक बड़ा मकसद ये रहेगा कि मुल्क की आजादी के लिए सिपाही यहां से सप्लाई किए जाएंगे, जंगे आजादी के लिए सिपाहियों को तैयार करना ये दारुलूम देवबंद के कयाम के मकासिद में से एक मकसद था। जिस देवबंद को आज पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश होती है, उस देवबंद को कायम करने का मकसद देश की आजादी के लिए सिपाहियों को तैयार करना था। उसके लिए दारुलूम देवबंद की बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने रखी और ये हमारे बुजुर्गाने दीन जिनकी बरकत से आज पूरे आलम को दावत और तबलीग का काम मिला। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्ला अलैह वो उसी दारुलूम देवबंद में पढ़ के तैयार हुए, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इन हजरात ने शामली के मैदान में बजाते खुद अंग्रेजों के सामने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। ये सिर्फ फतवे नहीं देते थे बल्कि मैदान के अंदर उतर करके जान की बाजियां लगाते थे और शामली के मैदान के जमाने के अंदर इन सब बुजुर्गों ने हजरत मौलाना मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हमारे बुजुर्गों ने हर तरह की कुर्बानी पेश की। हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके हालात में लिखा हुआ है कि शामली के मैदान के अंदर शहीद हुए और भी बहुत सारे हजरत अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते शहीद हुए। उस जमाने का एक अजीब वाकया मैं आपको सुनाऊं, ईमान को ताजा करने वाला। हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मदरसा मजाहिरुल उलूम सहारनपुर के बानी फाउंडर, उनके हालात में लिखा है, देखने वालों ने उनको देखा कि हजरत शामली की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने शरीक हुए, फिर पूरी जिंदगी मदरसा सहारनपुर कायम करके हदीस पढ़ाते रहे, हमेशा अपने होंठ को बैठे बैठे चूसा करते थे, जबान से चूसते चबाते रहते थे। किसी ने हजरत से पूछा, हजरत ये बच्चों जैसा काम क्या करते हो, अपने होंठ को चूसते हो चबाते हो। हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब नानोजी का जवाब सुनने के काबिल है, इरशाद फरमाया कि हम शामली के मैदान में अंग्रेजों के सामने लड़ने उतरे, शाम को जब जंग खत्म हुई بہت سے شہید لوگ زمین پہ گرے ہوئے تھے، حضرت حافظ نامی شہید کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی، حضرت کے بازو میں بھی زخمی ہو کے پڑا ہوا تھا، کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جنت کی حوریں جنت کے کٹورے میں شہیدوں کے لیے پانی لے کر کے اتر رہی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. کا سب فرشتے جنت کی حوریں جنت کے پیالوں میں پانی پلا رہی ہے تمام شہیدوں کو. ایک حور دوڑ کے میرے پاس آئی اور اس نے میرے ہونٹ کے اوپر پیالہ لگایا اور مجھے پلانا چاہا. ابھی صرف ہونٹ کو پیالہ لگا تھا، اتنے میں دوسری حور نے اس کو آواز لگا کر کے کہا، یہ تو ابھی زندہ ہے، یہ مرے نہیں ہیں، اور یہ جنتی پانی شہیدوں کے واسطے ہیں. یہ کہہ کر کہ اس نے اپنا پیالہ ہٹا لیا اور غائب ہو گئی. مولانا کی زندگی مقدر تھی، ابھی شہادت مقدر نہیں تھی، لیکن جنت کی نعمت فانی ہے، فانی نہیں ہے، باقی ہے. تو جو حور نے صرف پیالہ لگا دیا تھا، اس کا مزہ پوری زندگی مولانا کے ہونٹ کے اوپر باقی رہا. اس لیے فرمایا کرتے تھے، میں اسی جنت کے مزے کو چوسا اور چاٹا کرتا ہوں. سمجھ لو کان کھول کر کے، ملک کی آزادی کی لڑائی کو ہمارے بزرگوں نے اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا ایک حصہ سمجھ کر کے اس کو لڑا تھا، کہ ہمارے دھرم کا ایک حصہ ہے، ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، یہ سمجھ کر کے اس لڑائی کے اندر شریک ہوئے تھے. کوئی جا کر کے پوچھے، آج بھی تھانہ بھون میں حضرت حافظ زامین شہید کی قبر کے اوپر اہل دل لوگوں کو وہاں سے جنت کی لذت آتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق سنا، جب ہجرت کر کے زندگی کے آخری زمانے میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے، منہ کے اندر چبانے کی طاقت نہیں رہی. جب کوئی ہندوستان سے آتا مدینہ منورہ اور تھانہ بھون سے حضرت حافظ زامین شہید کی قبر کے اوپر جو بیر کا درخت ہے، اس بیر کے درخت سے بور مدینہ منورہ لے جاتا، تو حضرت اس کو منہ میں رکھ کر کے چوستے تھے اور یوں ارشاد فرماتے تھے کہ حافظ صاحب کی قبر پر جو بیر کا درخت ہے، اس بیری کے بیر سے مجھے جنت کا لطف آتا ہے. یہ حضرت شیخ زکریا صاحب کا ملفوظ ہے. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کو اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑی تھی اور اللہ کو راضی کرنے کے واسطے لڑی تھی. اس لیے جب دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا اور پورے ملک کے لوگوں کو ایک روح ملی اس ملک کے اندر جمنے کی اور اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنے کی، حضرات اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 1919 کے اندر خلافت تحریک نے جوش بہت زوروں میں چلی اور ہماری ترکی خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی ناپاک سازش کی گئی. اسی دور کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل کے اندر آیا اور ہمارے بزرگان دین نے پوری محنت کے ساتھ جنگ آزادی کو آگے بڑھایا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ 1335 ہجری کے اندر 22 سفر کو مالٹا کی جیل کے اندر گئے اور 1338 میں 20 رمضان کو چھوٹ کر کے مالٹا سے تشریف لائے. حضرت نے تحریک ریشمی رومال چلائی، اس ریشمی رومال تحریک کے نتیجے میں انگریزوں نے گرفتار کر کے مالٹا، یہ یوروپ کے اندر ایک جزیرے کا نام ہے، وہاں حضرت کو پہنچا دیا تھا. حضرت شیخ الاسلام مدنی مولانا عزیر گل، مولانا نافع گل رحمہم اللہ، ان کا بیان ہے کہ انگریز جس کوٹھڑی میں حضرت کو رکھے ہوئے تھا، اس کے اندر بڑے بڑے کالے زہریلے سانپ کو چھوڑتے تھے. جب سانپ کوٹھڑی میں آتے تھے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو بالکل جوان تھے، حضرت شیخ الہند فرماتے تھے بولے حسین احمد یہ زہریلا سانپ آ رہا ہے اللہ اللہ کی ضربے لگانا چالو کرو. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر شروع کرتے تھے اللہ اللہ کی ضربے لگاتے تھے. اللہ کے ان نیک بندوں کی شان یہ تھی کہ وہ سانپ بھی آ کر کے اپنی پھین پر کھڑا ہوتا اور حضرت مدنی کے ساتھ ذکر کے اندر شامل ہو جاتا تھا. وہ بھی اپنی پھین کو ہلاتا تھا, کبھی اس نے حضرت کو نہیں ڈسا. یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے لوگ ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, دنیا کے زہریلے جانور بھی ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے تھے. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چھوٹ کر کے ہندوستان تشریف لائے تو اس موقع کے اوپر سر رحیم بخش, جن کو انگریزوں کی طرف سے سر کا لقب ملا تھا, جب حضرت کا جہاز بمبئی پہنچا تو سر رحیم بخش آئے اور ہاتھ جوڑ کر کے حضرت شیخ الہند سے کہنے لگے حضرت جب سے آپ مالٹا چلے گئے حدیث کی مسند سنی پڑ گئی, خانقاہ اجڑ گئی, آپ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے جانشین ہیں, اب آپ یہ کیجئے کہ چھوٹ کے آگے تو خانقاہ لے کر کے بیٹھ جائے, دارالعلوم دیوبند کا مسند حدیث سنبھال لیجئے اور تشنگان علوم نبوت کو سیراب کیجئے, اپنے دل کی صفائی کے لیے آنے والوں کو خانقاہ کے ذریعے سے ان کے دلوں کو منور کیجئے. کتنے پیارے اور نورانی الفاظ سے اتقو بفراست المؤمن. حضرت شیخ الہند سمجھ گئے کہ یہ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ یہ دشمنی ہے, لیکن میٹھے لہجے میں بات مجھے کہی جا رہی ہے, زہر مجھے شہد کہہ کر کے پلایا جا رہا ہے. حضرت شیخ الہند کہاں ان کی باتوں میں آنے والے تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ارشاد فرمایا سر رحیم بخش صاحب کان کھول کر کے سن لو, ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہے, جس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوگی محمود حسن کو جینا تو جینا اس ملک میں دفن ہونا بھی گوارا نہیں ہے, میں ملک مر کے بھی وہاں دفن ہونا نہیں چاہتا ہوں, مجھے ملک میں بیٹھنا نہیں ہے, میں خانقاہ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں, جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے جہاں تک میں جا سکتا ہوں جاؤں گا اور لوگوں میں اعلان کروں گا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے, میں اعلان کروں گا. یہی نہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں, چلنے کی میرے اندر طاقت نہیں رہی ہے, میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا ایک چار پائی پر مجھے سلا دو بٹھاؤ اور میرے شاگردو میری چارپائی کو اپنے کندھوں پر اٹھاؤ اور مجھے لے لے کر کے گاؤں گاؤں محلے محلے شہر شہر جاؤ, میں چارپائی پر سوار ہو کر کے اعلان کروں گا انگریزوں کی غلامی حرام ہے انگریزوں کی غلامی حرام ہے. یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے جذبات تھے. حضرت کے متعلق ایک انگریز کا یہ لکھنا ہے کہ محمود حسن کو اگر جلا کے راکھ بھی بنا دیا جاوے تو اس کی راکھ میں سے بھی انگریزوں کی دشمنی کی آواز نکلے گی. یہ انگریزوں کا کہنا ہوا کرتا تھا. انہی کے سامنے بیٹھ کر کے مولانا الیاس صاحب تیار ہوئے, حضرت تھانوی تیار ہوئے, علامہ کشمیری تیار ہوئے, شیخ الاسلام مدنی تیار ہوئے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا جو آخری خطبہ صدارت عطا فرمایا وہ خطبہ صدارت کیا عجیب و غریب تھا, بالکل بڑھاپا تھا, بدن کے اندر کمزوری تھی اور جمعیت علماء ہند کا خطبہ صدارت دینے کے لیے تشریف لائے, بڑھاپے کی وجہ سے خود نہیں پڑھ سکے, اپنے شاگرد رشید خانوند علوم عثمانیہ کے ترجمان علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو کہا یہ میرا خطبہ پڑھ کے سنا دو. حضرت نے جو خطبہ پڑھا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو سنو. ارشاد فرماتے ہیں اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے, حضرت شیخ الہند کے الفاظ ہیں, اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے, اسلام انسان کی سیاست اقتصادیات تجارت بلکہ تمام شعبہائے زندگی کو محیط اور گھیرے ہوئے ہیں. जो शख्स ये समझता हो, हजरत उलमा तवज्जो दे, ये हमारे जद्दे मोहतरम के अल्फाज हैं, आज जिनकी तरफ अपनी हदीस की सनद करने को हम काबिले इफ्तिखार समझते हैं, बल्कि अल्लाह से दुआ करते हैं महशर के अंदर अल्लाह अगर हमारा हश्र फरमाए तो शेखुल इस्लाम मदनी और शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन के साथ अल्लाह हमारा हश्र फरमाए। हजरत के प्यारे अल्फाज हैं, जो शख्स ये समझता हो कि हुजरों में बैठे रहना इस्लाम की खिदमत के लिए काफी है, जो शख्स ये समझता हो हुजरों में बैठे रहना इस्लाम की खिदमत के लिए काफी है, तो वो कान खोल करके सुन ले कि उसका वजूद इस्लाम के पाक और साफ दामन पर एक दाग जैसा है। ये हजरत के प्यारे अल्फाज थे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल का जब वक्त आया तो आपके शागिर्दों ने कहा, हजरत आप देवबंद में दारुल उलूम में कोई जगह बतला दीजिए जहां आपकी कब्र बने और उस पर मार्बल की तख्ती लगे कि इस दारुल उलूम देवबंद का पहला तालिब इल्म और पहला शेखुल हदीस है, आप कोई जगह मुतय्यन फरमा दीजिए। शागिर्दों की दरख्वास्त जब हजरत ने सुनी, एक ठंडी आह भरी और आह भर करके इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे जज्बात थे मेरे बेटो कि मैं अपनी कब्र के लिए एक जगह मुतय्यन कर दूं। महमूद हसन से पूछा, मेरी क्या आरज़ू है? सब शागिर्द मुतवज्जे हो गए, कहने लगे, हजरत आप अपनी आरज़ू भी बतला दीजिए। इरशाद फरमाया उस बूढ़े मर्द मुजाहिद ने, कहने लगे, मेरी आरज़ू ये है, मैं जाऊं अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए मैदान में और लड़ते लड़ते मैदान में अंग्रेजों के सामने शहीद हो जाऊं। इतना ही न हो, अंग्रेजों की तलवारें मेरे मरे हुए बदन पे चले, मेरे बदन के कीमे सीमा कर डाले, बोटी बोटी अलग कर देवे और जंगल के जानवर कुत्ते आकर के मेरी बोटी खा जावे और कयामत के दिन महमूद हसन जानवरों के पेट से निकल करके मैदान कयामत के अंदर आवे और आवाज लगे कि महमूद हसन दीन मोहम्मदी के खातिर शहीद होकर के महशर में आ रहे हैं। ये मेरी आरजू और तमन्ना है। ये हमारे आबाओ अजदाद और असलाफ मोहतरम थे। हजरत का जब इंतकाल हो गया, गुसल के लिए तख्ते के ऊपर लिटाया, आपके कपड़े उतारे गए, कमजोर बदन, खूबसूरत और नूरानी बदन, लेकिन जब गुसल के लिए कपड़े उतारे गए, सुनो दिल हिलाने वाली दास्तान, पूरा बदन गोरा और नूरानी था, पीठ मुबारक पूरी काली पड़ी हुई थी। गुसल देने वाले हैरत में पड़ गए, हजरत की पीठ मुबारक कैसे काली है? हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना उजीर गुल और नाफे गुल ने कहा, ये एक रास की बात थी, भेद की बात थी, आज मजबूर होकर खोलनी पड़ रही है। माल्टा के अंदर जेल के जमाने में जब बर्फ पड़ी हुई होती थी तो अंग्रेज हजरत को रात के आखिरी हिस्से में नींद में से उठाते और उठा करके बर्फ के ऊपर उल्टा सुलाते और सुला करके अंग्रेज पुलिस लोग हजरत की पीठ के ऊपर कोड़े मारते थे, गरम गरम सलियों को लाल करके हजरत की पीठ मुबारक के ऊपर दाग दिए जाते थे। अंग्रेज की जेल में जो तकरीबन 4 साल के अरसे में हजरत की पीठ के ऊपर जो मार पड़ी और गरम सलाखें लगी, जिसकी वजह से आपकी पीठ मुबारक काली पड़ चुकी थी। ये वो मजलूमियत है जो इस मुल्क की आजादी के खातिर हमारे बुजुर्गों ने बड़े मजालिम को बर्दाश्त किया। मैंने अपने पीर मुर्शिद हजरत अकदस मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से दारुल उलूम देवबंद की छत्ता मस्जिद में बैठकर अपने इन कानों से ये बात सुनी। हजरत फरमाते थे, 1947 के अंदर मुल्क आजाद हुआ और जो खून की होलियां खेली जा रही थी पार्टीशन और तकसीम मुल्क के नाम पर, तो उस मौके पर गांधी जी का एक बयान ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर हुआ। गांधी जी ने कहा कि ये लोग मुझे यूं कहते हैं कि मैं इन मौलवियों से भी कह दूं कि तुम भी पाकिस्तान चले जाओ, ये देवबंदी मौलवी लोग क्यों पाकिस्तान नहीं जाते? तो गांधी जी के अल्फाज थे, मैं किस मुंह से इनको कहूं कि पाकिस्तान चले जाओ, जब पूरा हिंदुस्तान मीठी नींद में सोया हुआ था, अंग्रेज लूट रहा था। तो सबसे पहले देवबंद के मौली महमूद हसन उठे और उन्होंने मुल्क वालों को आजादी के लिए झिंझोड़ करके बेदार किया। मुझे वो दिन याद है, मैं किस मुंह से कहूं कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, ये गांधी जी के अल्फाज थे। मेरे दोस्तों, इस मुल्क की आजादी के वास्ते हमारे अकाबरीन ने बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। आपको मालूम होना चाहिए कि मुल्क की मुकम्मल आजादी की तजवीज पास करने वाली जमीयत उलमाए हिंद थी। उससे पहले किसी ने मुल्क की मुकम्मल आजादी की तजवीज पास नहीं की। 1924 के अंदर कोक नाडा में जमीयत उलमाए हिंद का इजलास हो रहा है, शेखुल इस्लाम हजरत मदनी की सदारत के अंदर, और हजरत ने ऐलान फरमाया कि हम मुल्क की मुकम्मल आजादी से कम किसी चीज के ऊपर राजी नहीं हो सकते। इंटरनेशनल कांग्रेस ने जमीयत उलमा की उस तजवीज को सपोर्ट किया है। मुल्क की मुकम्मल आजादी की तजवीज पास करने वाले आज हम फखर से कह सकते हैं हम मुसलमान थे, दूसरों ने सिर्फ उसकी तारीफ की है। 1942 के अंदर क्वाइट इंडिया की तहरीकात चली, उसके अलावा तर्क मुआलात की तहरीकें चली, और 1931 में सिविल नाफरमानी की तहरीक चली, 1925 में जब तर्क मुआलात जिसको आजकल असहकार आंदोलन कहते हैं वो जब चरवड़ चली थी, तकरीबन 925 उलमाए किराम ने एक फतवा शाये करके अंग्रेजों की बनाई हुई हर चीज का बाइकाट करने का फैसला किया। अंग्रेजों का कपड़ा नहीं, अंग्रेजों के लिबास नहीं, अंग्रेजों की नौकरी नहीं, सरकारी मुलाजमत नहीं, अंग्रेजों के तमगे नहीं, कोई चीज हमें अंग्रेजों की नहीं। इस तरह के मुआलात के फतवे से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई और वो घबरा उठे कि अब इस मुल्क को गुलाम बना के रखना हमारे लिए आसान नहीं है। उसी दौर में 1931 में जब सिविल नाफरमानी की तहरीक चली तो 44,500 मुसलमान गिरफ्तार हुए और उन्होंने जेल भर करके जेलों को अपने सजदे और नमाजों से आबाद कर दिया। आज भी कराची जो उस वक्त पर हमारे मुल्क का एक हिस्सा था, कराची का वो हॉल और वो दीवार शहादत दे रही है कि जब उस कराची के हॉल के अंदर हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उस फतवे के खिलाफ अंग्रेज जज ने गिरफ्तारी का वारंट दिया, उसमें हजरत मदनी को, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, मौलाना शौकत अली को, इन सब हजरात को गिरफ्तार करके अंग्रेज जज के सामने खड़ा किया गया। तो अंग्रेज जज अपनी कुर्सी पर बैठकर हजरत मदनी से सवाल करता है कि आपने कहा था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती करना हराम है। हजरत मदनी जवाब के अंदर कहते हैं कहा था, कहा था, और अभी भी कहता हूं, और जब तक हुसैन अहमद के बदन में जान है कहता रहूंगा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती करना हराम है। मौलाना जौहर कान में कहते हजरत कुछ तौरिया और किनाये की बात कीजिए, ये अदालत है, ये जलसा गाह नहीं है। हजरत ने दरार करके शेर वाली आवाज लगा करके फरमाया खामोश रहो, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनते रहो। अंग्रेज जज कहने लगा हुसैन अहमद तुमको मालूम है कि तुम्हारी इस के फतवे के ऊपर तुमको क्या सजा हो सकती है? तुमने जो अंग्रेज की फौज में भर्ती हराम होने का फतवा दिया है इस पर क्या सजा हो सकती है तुम्हें मालूम है? जब अंग्रेज ने सवाल किया, हाथ में थैला था उसमें से कफन का कपड़ा निकाला और निकाल करके उस जज के टेबल पर रख करके इरशाद फरमाया कि मुझे मालूम है इसकी सजा क्या हो सकती है, इसलिए देवबंद से अपना कफन साथ लेकर के आया हूँ ताकि कराची वालों को हुसैन अहमद के लिए कफन तलाश करने की नौबत भी पेश ना आए। ये हमारे आबा अजदाद थे जो इस मुल्क के खातिर
हर तरह की कुर्बानी देने के लिए पेश पेश रहते थे। हजरत गिरामी, आज इस अजीम शान तारीख को भुलाने की नापाक कोशिशें हो रही है। इसी नाम के ऊपर के मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, नहीं हमने नहीं लिया। पाकिस्तान किसने लिया, किसने बनवाया, एक कड़वी और खतरनाक दास्तान है। अगर इस हकीकत के पीछे आप जाएं, डिप के अंदर उतरे ताकी करते हुए, तो शायद उन लोगों के चेहरों पर से पर्दा हटेगा जो आज इस मुल्क के हीरो कहे जाते हैं। हम कहते हैं कि मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम क्यों बाजार से गायब कर दी गई, क्या जुर्म था मौलाना की इस किताब का कि मौलाना के इंतकाल के 30 साल के बाद इंडिया विंस फ्रीडम किताब जब छपती है तो उसको मिनटों में सेकंडों के अंदर बाजार से क्यों गायब कर दिया गया। क्योंकि मौलाना ने तकसीम मुल्क के मौके के जितने भी गद्दार थे उन असली गद्दारों के नाम उस किताब के अंदर खोले थे। सुन लीजिए, जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो जाने, उनका मांगना जाने, हमारे बुजुर्गों ने, तमाम अकाबिरीन दारुलूम देवबंद ने, तमाम अकाबिरीन जमीयत उलमाए हिंद ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। पंजाब का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान में है, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब वहां तशरीफ ले जाते थे तो वहां के मुसलमान अपनी जवान जवान लड़कियों को हजरत के सामने नचवाते थे और कहते थे कि कांग्रेस का एजेंट आया जो पाकिस्तान का मुखालिफ है। शेखुल इस्लाम के बजाय शेखुल असनाम कहते थे। और हुआ भी वही, एक वली ने खामोशी के साथ मुसलमानों के मजालिम को चुपचाप सुन लिया। नतीजा ये हुआ, ये नतीजा हुआ 1947 के अंदर जब मुल्क तकसीम हुआ है और पंजाब के अंदर मजलूमियत की जो दास्तान हुई है, तो जिन मुसलमानों ने अपनी बेटियों को हजरत के सामने नचवाया था, एक दिन वो आया कि वहां के सिखों ने उन मुसलमानों की लड़कियों से मुसलमानों के सामने जबरदस्ती न करने के वो काम किए और 70,000 मुसलमान लड़कियों का अगवा हुआ, कत्ले आम हुआ। वली की दिल की बद्दुआ ने बर्बाद किया उन लोगों को। एक जगह हजरत मदनी के ऊपर थूका गया और फर्जी जनाजा लाकर के हजरत के सामने नमाज के लिए रखा गया। वो लीगी ख्याल के कुछ मुसलमान थे, हजरत की मजाक उड़ाना चाहते थे। एक जिंदा आदमी को जनाजे में सुलाया और दावत दे के लाया, हजरत जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। सफ लगा दी गई। मशवरा ये हुआ था कि जब हजरत दो तकबीर कह देवे तो वो जनाजे में खड़ा होकर के चिल्लावे और पूरा मजमा ताली बजा करके हजरत की मजाक उड़ावे। जब हजरत जनाजे की नमाज के लिए आगे बढ़े तो 3 मरतबा पूछा, जनाजा पढ़ाऊं, जनाजा पढ़ाऊं, जनाजा पढ़ाऊं। लोगों ने कहा जनाजा पढ़ाने के लिए तो लाए हैं, बस अल्लाहु अकबर कहकर के तकबीर शुरू कर दी। एक तकबीर, दूसरी तकबीर, तीसरी तकबीर, पीछे मजमा मुंतजिर है हजरत की मजाक उड़ाने के वास्ते। लेकिन वो आदमी उठा नहीं। 4 तकबीर हो गई, सलाम फिराया, लोग हैरत में, ये उठा क्यों नहीं। जाकर के उसकी उसके जनाजे से कपड़ा उठाया तो वाकई वो आदमी मर चुका था। हदीस में है, मन आदा ली वलीयन फकद आज़न्तुहु बिलहर्ब, जो मेरे वली को सताए मेरी तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। हजरत ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, मैंने इसीलिए तो कहा था कि क्या जनाजा पढ़ा दूं, अगर तुम मुझे ना कह दे तो मैं पीछे हट जाता। हजरत ने बहुत समझाया लेकिन मुसलमान एक के दो नहीं हुए और पाकिस्तान लेके रहेंगे के नारे लगाते रहे। बस उसका नतीजा जो हुआ वो हुआ। आज वो वहां परेशान, ये यहाँ जो है कसम पुरुष के आलम में, उधर बांग्लादेश अलग। काश के हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बात को मान लिया होता। जब सर स्टोफर्ड क्रिप्स आया हिंदुस्तान, कैसी आजादी चाहिए, तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब शिमला में उसको मिलने के लिए तशरीफ ले गए और हजरत ने आजादी का मदनी फार्मूला पेश किया, हमें मुल्क के टुकड़े नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान का इत्तेहाद बाकी रहे।
और हजरत ने जो मदनी फार्मूला पेश किया तो सर स्टोफर्ड क्रीप्स अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और मौलाना आजाद को अंग्रेजी में पूछता है, ये मौलवी ने पॉलिटिकल साइंस दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में कहाँ पढ़ा है? तो मौलाना आजाद ने कहा कि ये तो देवबंद के मदरसे में चटाई पर बैठ करके पढ़ने वाला पढ़ाने वाला एक तालिब इल्म है। तो स्टोफर्ड क्रीप्स कहता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर इतनी ऊंची सोच है उसकी, का आज दुनिया के बड़े बड़े अंग्रेज की सोच को नहीं पहुंच सकते, वहां हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सोच पहुंची हुई थी। बहरहाल बहुत मुखालफत की, लेकिन कुछ लोग थे जो तकसीम और पार्टीशन के अंदर अपनी खैरख्वाही समझते थे। मुसलमान ये नहीं सोच सके कि जो मिस्टर मोहम्मद अली जीना अपने 6 फुट के बदन पर इस्लाम मजहब को नहीं ला सका, वो 6 करोड़ आबादी के मुस्लिम आबादी वाले मुल्क के ऊपर कैसे इस्लाम ला सकेगा। मुसलमान इसकी तरफ से गफलत में रहे और हसीन नारों के चक्कर में आकर के मौलाना आजाद ने तो फरमाया था कि मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि लग से पाकिस्तान ही सही होवे, पाकिस्तान अलग बने वो तो समझ में ही नहीं आता, लफ्ज़े पाकिस्तान ही मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ये होता है कि एक जमीन पाक बाकी दूसरी जमीन नापाक का ये लफ्ज़ ही मेरी समझ में तो नहीं आता। ये हजरत मौलाना ने इसी लफ्ज़ के जरिए से उसके ऊपर विरोध और मुखालफत की थी। मौलाना आजाद फरमाते हैं, मैं वल्लभ भाई पटेल से मिला, गांधी जी से मिला, नेहरू जी से मिला, सबसे मिलता रहा, आखिर के अंदर जब मैंने देखा कि ये सब लोग भी अब जो है राजी हो रहे हैं तकसीम के ऊपर, मौलाना आजाद के अल्फाज है कि मेरे पैर के नीचे से जमीन हट गई कि अब तो इस मुल्क को कोई बचा सकता नहीं है। जब ये सब लोग भी इसके लिए राजी है, आज हम फखर से कह सकता हूं मैं, और मेरा सवाल है हिस्ट्री और तारीख के एक स्टूडेंट तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमिटी ने उस जमाने में पार्टीशन और भागले के ठहराव और तजवीज को मंजूर किया था, तुम्हारी मेरी एक तंजीम थी जमीयत उलमाए हिंद के, जिसने इस तजवीज की आखिरी मिनट तक मुखालफत की थी कि हमको ये तकसीम मंजूर नहीं है, हम किसी हाल में इस तकसीम को गवारा नहीं कर सकते। बहरहाल जालिक तकदीर अजीज अलीम जो मुकद्दर में था वो होकर के रहा। मेरे मुसलमान भाइयों, हम कभी तकसीम को मांगने वाले नहीं थे, ना हमारे बाप दादाओं ने मांगी थी, हम हमेशा तकसीम मुल्क के मुखालिफ रहे हैं। इसलिए ये कहना कि मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, ये बात सरासर गलत है, ये एक नापाक गंदी सियासत का नतीजा है। मैं तो आमतौर पर कहा करता हूँ, जब बहुत सी मरतबा हमारे हिंदू ग्रेजुएट पढ़े लिखे भाइयों के साथ बैठ करके बातचीत करना होता है और किसी हॉल में उनसे किसी टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है, तो मैं उनको एक बात कहा करता हूँ आमतौर पर, सुनो तुम लोग तो बाय चांस इंडियन हो, हम बाय चॉइस इंडियन है। तुम बाय चांस इंडियन हो कि तुम्हारे बाप यहाँ पैदा हुए और तुम यहाँ पैदा हुए इसलिए इंडियन हो, हम बाय चॉइस इंडियन है। 1947 के अंदर जब मुल्क तकसीम हो रहा था, हमारे सामने चॉइस और इख्तियार था कि हम भी पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हम नहीं गए, हम अपनी पसंद और चॉइस से इस मुल्क के अंदर रहे और हमने फैसला कर लिया है इस मुल्क के साथ अपनी तकदीर के वाबस्ता करने का। क्या बात थी कि मस्जिद नबवी में बैठ करके हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ पढ़ाते थे और पढ़ने वाले अरब तालिब इल्म होते थे, सब चीजों को छोड़ छाड़ करके हिंदुस्तान तशरीफ ले आए और हिंदुस्तान आकर के आजादी की जंग के अंदर आपने हिस्सा लिया। जब मुल्क आजाद हो चुका तो हजरत मदनी के भाई जो मदीने मुनवरा में थे और बाद में अभी जिस भाई का करीब में इंतकाल हुआ, चचाजाद भाई का, उनकी तो पोजीशन एक मौके पर इतनी ऊंची थी कि हुजरा शरीफ की चाबी मुबारक भी उनके पास रहा करती थी, गुम्बद हिजरा की। हजरत मदनी के चचाजाद भाई हजरत मौलाना आसिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पहले वाले कौसर का, उस इतने वो मदीना के बड़े मालदार लोग उन्होंने बाकायदा एरोप्लेन भेजा, चार्टर फ्लाइट भेजा कि अब तो मुल्क आजाद हो चुका, अब फैमिली के साथ मदीने मुनवरा आ जाओ। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने वो हवाई जहाज वापिस किया और इरशाद फरमाया, मैंने फैसला कर लिया है कि मेरा मुस्तकबिल और मेरी तकदीर हिंदुस्तान और यहाँ के मुसलमानों के साथ रहेगी। मैं अब यही कह करके रहा हूँ, कितनी सारी कुर्बानियों के बाद हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा था मुल्क की आजादी का जो मैंने आपके सामने पेश किया है। इस मौजू पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। मैं आपके इलाके के उलमा से बादअब दरख्वास्त करूंगा इस मौजू के ऊपर मुताला करें। उलमाए हिंद का शानदार माजी मौलाना सैयद मोहम्मद मियां साहब की किताब 3 जिल्दों में है, और तहरीक रेशमी रुमाल, और हजरत मदनी की सवाने, चिरागे मोहम्मद, मुजाहिद कौम मिल्लत, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने, और भी बहुत सारी किताबें इस मौजू पर है। उसको पढ़े और पढ़ करके अपने लोगों को उससे बाखबर करें। जब हमको आजादी में हमारा हिस्सा मालूम होगा, एतमाद पैदा होगा और आजादी के वर्षे की हिफाजत की हमें फिक्र होगी। क्या वजह थी कि मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब से हारवी का जिस दिन इंतकाल हुआ और गली कासिम जान दफ्तर जमीयत उलमा हिंद कदीम से जब मौलाना का जनाजा निकला है, तो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना के जनाजे के पीछे पीछे रोते रोते एक बेटे की तरह चलने लगे, और जब दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने जनाजे की नमाज के लिए सफे लगाई गई, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, तो हजरत कारी साहब के पीछे जनाजे की नमाज के लिए खड़े होने वाले आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब जनाजे की नमाज पूरी हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज थे, आज हिंदुस्तान ने अपने एक बहुत बड़े मोहसिन को गंवा दिया है, एक अजीम मोहसिन को आज हिंदुस्तान ने गंवा दिया है। आज उस अजीम मोहसिन का जनाजा उठ रहा है। हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो हक रखते थे कि जब जबलपुर में फसादात हुए तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के नेहरू जी के सामने अड़ गए, नेहरू जी कुर्सी छोड़ दो, अगर तुमसे मुसलमानों की हिफाजत नहीं होती, मुल्क की पब्लिक की हिफाजत की कुर्सी छोड़ दो, अल्लाह किसी और बंदे को खड़ा करेंगे जो मुल्क की कुर्सी की हिफाजत करे। ये शेर बबर जैसे अल्फाज मुजाहिद मिल्लत जिस एतमाद से बोलते थे पार्लियामेंट में, क्या वजह थी? मुल्क की आजादी के खातिर उन्होंने तवील तरीन जेलें बर्दाश्त की थी। आखिर में दो बातें कहकर के हम अपनी बात को खत्म करते हैं। 1928 के अंदर जब वल्लभ भाई पटेल एक छोटे से गांव करमसद के रहने वाले, इनको सरदार तो हमारे बारडोली वालों ने बनाया है, सरदार का लकब देने वाले तो हम हैं। हमारे यहाँ जो खेडूत लोग, किसान लोग अंग्रेज गवर्नमेंट को जालिमाना टैक्स नहीं देते थे, उनकी जमीनों को अंग्रेजों ने एक्वायर किया, जब्त किया, और जब्त करके उन जमीनों का नीलाम किया, हराजी की, और नीलाम करके अंग्रेजों ने टैक्स के पैसे वसूल करना शुरू किए। अब वो जमीनें अंग्रेजों को तो क्या मतलब, पैसों से मतलब, सस्ते में जमीन बेच देते थे, तो मुसलमान भी शौक शौक में जमीनें खरीदते थे। तो उस जमाने में हमारे बारडोली के पाटीदार हिंदू पटेलों ने एक फतवा सवाल लिखा और हमारे जामिया डाभेल के दारुल इफ्ता के अंदर वो सवाल नामा भेजा। उस वक्त मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1928 के अंदर फतवा लिखा कि ऐसी अंग्रेजों की जब्त की हुई जमीनों को नीलाम के अंदर लेना ये मुसलमानों के लिए मजहबी एतबार से नाजायज और हराम काम है। ये फतवा क्या था, अंग्रेजों को आग लग गई और जिस प्रेस में सूरत में वो फतवा छपा था वो प्रेस उन्होंने बंद करवा दिया, फतवा जब्त कर लिया और मौलाना अतीकुर रहमान साहब को मजबूरन डाबेल छोड़कर के चले जाना पड़ा। इन हजरात ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस तहरीक को तायीद करने वाले ये हमारे अकाबिरीन किराम ने, आगे चलिए। आज तक हमारे यहाँ आश्रम है, स्वराज आश्रम, उस आश्रम के अंदर फाइलों में आज तक वो फतवा मौजूद है। पाटीदार पटेल लोगों ने सवाल किया था और डाबेल के दारुल इफ्ता से उसका जवाब गया था। और 1930 के अंदर जब गांधी जी ने डांडी सत्याग्रह किया और नमक की तहरीक चलाई, तो हमारे डाबेल के पड़ोस में पूरा हिंदुओं का एक गांव है दामन करके, गांधी जी वहां ठहरे हुए थे। डाबेल से मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब से हारवी मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी गए और जाकर के अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम पहुंचाया कि हमारे उस्ताद मोहतरम इमाम वक्त मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी का ये कहना है कि ये नमक मबाहुल असल चीजों में से है, उस पर टैक्स लगाना ये अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से जुल्म है। मैं अपने नबी के फरमान के जरिए से तुम्हारी इस तहरीक की तारीफ करता हूँ। गांधी जी को जब अल्लामा कश्मीरी की ये बात पहुंची तो दूसरे दिन नवसारी की एक आम इजलास में जाहिर सभा में गांधी जी ने अलग ऐलान कहा, डाबेल से मौलाना कश्मीरी ने, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब ने, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब ने मेरी इस चरवड़ की ताईद की जिससे मेरी इस चरवड़ को नई ताकत नसीब हुई है और मैं अब हिम्मत से दांडी तक आगे बढ़ूंगा। साथ में मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब और मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब दांडी तक तशरीफ ले गए और जेल की सख्तियों को बर्दाश्त करने में शामिल रहे। गर्ज ये कि आजादी की तमाम तर तहरीकात के अंदर हमारे बुजुर्गों ने पूरे पूरे तौर पर हिस्सा लिया है। ये जब मैंने अभी वाकया सुना है, हजरत शबलिन रहमतुल्लाह अलैह जब जेल से छूट के आए और बंबई की बंदरगाह पर पहुंचे तो हजरत ने तमाम मुसलमानों से खिताब में यूं कहा कि मेरा दिल चाहता है कि अब अंग्रेजों को निकालने के लिए इस मुल्क की बहुमती प्रजा यानी हिंदुओं को भी साथ लेना चाहिए, उसके लिए हिंदुओं में से एक आदमी को लीडर बनाना चाहिए। का हजरत किसको लीडर बनाए? बहुत से नाम आए। उस वक्त गांधी जी नए नए अफ्रीका से आए हुए थे बैरिस्टरी कर कर के, वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से पहचाने जाते थे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की निगाहे इंतखाब को देखिए, हजरत ने यूं फरमाया, ये बहुत सारे हिंदू लीडरों के नाम आए हैं लेकिन मेरा दिल चाहता है कि हम लीडर बनाए उस नौजवान को जो अभी अफ्रीका से बैरिस्टर बन के आया है, मुराद मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे। उनको हीरो बनाने वाले हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी थे। महात्मा लकब, महात्मा गांधी जी, ये लकब मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, महात्मा का लगम। और आज जिसको गांधी टोपी कहा जाता है, ये गांधी जी के सर पर कभी आपने टोपी देखी जिंदगी में? किसी फोटो में है टोपी, लेकिन ये गांधी केप, गांधी टोपी आई कहां से? ये दर हकीकत हकीम अजमल खां की टोपी है। जंग आजादी के एक मर्द मुजाहिद हकीम अजमल खां ऐसी टोपी पहनते थे। वो तो आजादी के जमाने में एक जश्न के मौके पर, एक जलसे के मौके पर वो टोपी निकाल करके 10 मिनट के लिए गांधी जी के सर पर पहनाई। उस दिन से वो गांधी कैप के नाम से मशहूर हुई, वरना हकीकत में वो हकीम अजमल खां की वो कैप और टोपी थी। मेरे दोस्तों, इस मुल्क की आजादी के लिए हमने बेशुमार कुर्बानियां दी है। अल्लाह हमारी नकाबीन की कब्रों को दूर से मुनवर फरमाए। और इन्होंने आजादी की लड़ाई महज अल्लाह के लिए लड़ी, महज अल्लाह के लिए लड़ी। अभी कारी अब्दुल अजीज साहब किरात पढ़ रहे थे, आप सुन रहे थे, वबतगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, कि इस दुनिया की जिंदगी के जरिए आखिरत कमाओ। हमारे बुजुर्गों ने जंगे आजादी दुनिया के लिए नहीं लड़ी, आखिरत के लिए लड़ी। नतीजा ये हुआ, मुल्क आजाद हुआ और मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड जो उस जमाने में पद्म भूषण हुआ करता था, मुल्क की पार्लियामेंट ने ये तजवीज पास की कि पद्म भूषण का अवार्ड शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को दिया जाना चाहिए। और नेहरू जी ने मौलाना को बाकायदा पार्लियामेंट में बुलवाने भेजा, हजरत आप पार्लियामेंट में तशरीफ लाइए, आपको मुल्क का अवार्ड दिया जाएगा कि आप इस मुल्क के सबसे बड़े मोहसिन इंसान हैं। हजरत मदनी ने जवाब भेजा पंडित नेहरू जी को, नेहरू जी माफ कीजिए, हमने मुल्क की आजादी की लड़ाई अवार्ड लेने के लिए नहीं लड़ी थी, हमने अवार्ड के खातिर लड़ाइयां नहीं लड़ी थी, ये अवार्ड जिनको मुबारक हो, हमने तो अल्लाह और मुल्क के खातिर ये लड़ाइयां लड़ी थी। हजरत ने ठुकरा दिया और अवार्ड कबूल नहीं फरमाया। ये अल्लाह के लिए लड़ने वाले हजरत थे। मेरे दीनी भाइयों, आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि इस मुल्क की आजादी के अंदर हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह इन सब की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को जन्नत अल-फिरदौस के अंदर बुलंद फरमाए। उनकी तारीख जानने के लिए आप हजरात ने इस जलसे का इनेकाद किया। इस मदरसे के जिम्मेदारान, इस कालेड़ा शहर के मुसलमानान और दूसरे भी तमाम उलमा जिनकी जद्दोजहद और मेहनत से ये जिलास हुआ, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सही काम आपने उठाया है और ये गांव गांव, चप्पा चप्पा, महल्ला महल्ला होना चाहिए। हर 15 अगस्त पर, हर 26 जनवरी के ऊपर जलसे हो जिसमें मुसलमान खुशी से कौमी परचम लहराएं और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करें। हम बिरादरान वतन को बतलाएं कि हम भी इसकी आजादी के असर बराबर के शरीक हैं। ये हमारा मुल्क है, हम उसके गद्दार नहीं, हम तो पूरे पूरे वफादार हैं।